गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्ना नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदिगौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। आप सबका श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कान वृंदावन में राधा अष्टमी के दूसरे दिन प्रातः काल के श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी के भाव को अंगीकार करके श्री कृष्ण प्रेम भक्ति देने के लिए आए ऐसे पवित्र दिन पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का जो अनुपम शास्त्र है श्री चैतन्य चरित अमृत उसके आदि लीला उसकी तीन भाग हैं आदि मध्य और अंत्य लीला। ये तीन भाग इसका कौन से आधार पे किया गया है चैतन्य महाप्रभु के जन्म से लेकर संन्यास तक आदि लीला संन्यास लेने के बाद 6 वर्ष तक जो उन्होंने दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में भ्रमण किया वो मध्य लीला। 18 साल जो चेतन महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे वो अंत्य लीला। तो ऐसे 3 भाग इसके हैं। तो हम आदि लीला का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं जिसमें गुरु के तत्व के विषय में बताया गया है। तो आज जो श्लोक पढ़ेंगे ये श्लोक तो भागवत का है। इस श्लोक क्यों यहां आया है तो एक इससे पहले का श्लोक आपने पढ़ा है उसको एक बार देख लें तो फिर इस श्लोक को पढ़ें। चलो पहले इसी को पढ़ लेते हैं। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम् मदन्यते न जानात्नान्ति नाहं ते व्यो मनागपि। साधवो हृदयं मह्यं साधुनां हृदयं त्वहं मदन्यते न जानन्ति नायं तेभ्यो मनागपि। साधवो हृदयं मह्यं साधुनां हृदयं त्वहं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। साधवो हृदये मह्यं साधवो हृदयं मह्यं साधुनां हृदयं त्वहं मदन्यते ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। माताजी साधवो हृदयं मह्यं साधुनां हृदयं साधवो हृदयं मह्यं साधुनां हृदयं त्वहं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। साधवः साधुगण हृदयं हृदय मह्यं मेरे साधुनां साधुओं का हृदयं हृदय तो निस्संदेह अहम् मैं मां मेरी अपेक्षा अन्य अन्य ते वे ना नहीं जानन्ते जानते हैं ना नहीं अहम् मैं उसके आ तेभ्या उनकी अपेक्षा मनाक थोड़ा सा अपि भी। और श्री प्रभुपाद का अनुवाद, संत तो मेरे हृदय हैं और एकमात्र मैं ही उनके उनका हृदय हूं, उनके हृदय में हूं ऐसे नहीं लिखा है, मैं ही उनका हृदय हूं ऐसे लिखा है। मर गया, छोड़ दो बेचारे। संत तो मेरे हृदय हैं, बोलिए, और एकमात्र मैं ही उनका हृदय हूं, वे मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी को अपना नहीं मानता। कौन बोल रहा है ये? ये बोल रहे भगवान विष्णु वैकुंठ में। किसको बोल रहे हैं? दुर्वासा मुनि को बोल रहे हैं। किसके लिए बोल रहे हैं? अम्बरीश महाराज के लिए बोल रहे हैं। अम्बरीश सरी के भक्तों के हृदय में मैं रहता हूं और वो मेरा हृदय है, उनको छोड़ के मैं, वो मेरे को मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते हैं, मैं उनके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता हूं। ये अम्बरीश महाराज को भगवान नारायण वैकुंठ में कह रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, ये श्लोक श्रीमद् भागवत के नवे स्कंद के चौथे अध्याय का 38 श्लोक है, 68 श्लोक है। मैं दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश, श्रीमद् भागवत में दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश के बीच उत्पन्न हुए गलत फहमी के प्रसंग में आया है। गलत फहमी क्यों लिखा है? अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि के बीच में गलत फहमी क्या हो गई? गलत फहमी क्या हो गई कि एक बहुत बड़ा योगी एक भक्त की महानता को जानने में नहीं जान पाया। अच्छा, दुर्वासा मुनि है कौन? कौन है? शंकर जी का अंश है, अत्रि और अनुसूया का पुत्र है, तो कोई सामान्य तो है नहीं, ईश्वर अवतार है। फिर वो भक्त की महिमा कैसे नहीं जान पाए, क्यों नहीं जान पाए, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। भक्त की महिमा को विश्व में विख्यात करने के लिए ये लीला है कि भक्त तपस्वी से, ज्ञानी से, योगी से महान है, और इसके लिए प्रमाण भगवान के मुख से सुनने के लिए ये लीला है। सो दुर्वासा के दोनों के बीच में गलत फहमी हो गई। इस गलत फहमी के कारण दुर्वासा मुनि ने राजा को मारने का प्रयास किया। कैसे? अपने बालों को नीचे झटक के एक कृत्या बनाई और कहा कि जाके अम्बरीश को मारो, और कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए गई। अम्बरीश द्वादशी के पारण के समय भगवान का चिंतन कर रहे थे। अम्बरीश के लिए एक शब्द बार बार प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवत के श्लोक का, कौन सा है? सवई मन कृष्ण पदार विंदयो। अम्बरीश ऐसे उदाहरण है जिनका मन सदा कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान में लगा रहता है। ये अम्बरीश नवदा भक्ति के सर्वांग भक्ति का उदाहरण है। एक अंग भक्ति के उदाहरण अलग है, ये सर्वांग भक्ति का उदाहरण है। ये मन से भगवान का चिंतन करते हैं, पांव से भगवान के मंदिर में जाते हैं, आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं, कानों से भगवान का कीर्तन सुनते हैं, जीभा से भगवान का गुणगान करते हैं, नासिका से भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी को सूंघते हैं। तो ये सर्वांग भक्ति का उदाहरण है। अम्बरीश महाराज आत्मनिवेदन का भी उदाहरण है दास्य भक्ति में। सो अम्बरीश महाराज का मन भगवान में लगा हुआ था, सबसे मुख्य बात है ये। तो कृत्या अम्बरीश महाराज का कुछ बिगाड़ न सके। ऐसे एक बार कृत्या शंड और अमरनिक ने बना के प्रहलाद को मारना चाहता, लेकिन प्रहलाद के भी मन में भगवान प्रहलाद कौन सी भक्ति का उदाहरण है? सुमरण भक्ति का। और सुमरण किससे होता है? मन से। उसके भी मन में भगवान सुमरण हो रहा था, तो कृत्या उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तो उधर कृत्या वापस संडो और अमक को जाके मार दिया। प्रहलाद को पता लगा तो उसने कहा कि अगर मैंने मुझे मारने वालों से द्वेष नहीं किया है तो मेरे गुरु के पुत्र जीवित हो जाए, और उसके दोनों गुरु के पुत्र जीवित हो। और यहां कृत्या को किसने मार दिया? सुदर्शन चक्र ने। भगवान का सुदर्शन चक्र भक्तों की रक्षा के लिए है, असुरों के संहार के लिए है। जब श्री कृष्ण अर्जुन के रथ से कूद के नीचे भीष्म की ओर दौड़े तो सुदर्शन चक्र को कहा, चक्र ने कहा, मैं भक्तों को मारने के लिए नहीं हूं, मैं तो असुरों को मारने के लिए। भीष्म तो आपका भक्त है। तो धरती कांपी कि ये कैसे हो गया। भगवान ने अपनी ओत्री नीचे गिरा दी धरती को शांत करने के लिए, फिर रथ का पहिया उठाया, रथांग पानी बने। यह चक्कर भगवान का नहीं आया भीष्म को मारने के लिए, चक्कर असुरों के संहार के लिए है। और चक्कर कृत्या को मारने के बाद दुर्वासा को खदेड़ने लगा, और दुर्वासा वहां से भागे, ब्रह्मा जी के लोक में चले गए सीधे। सत्य लोक तक जा सकते थे, ब्रह्मा जी ने कहा आइए दुर्वासा जी, बोला मेरी रक्षा करो। बोला कौन तुम्हें मार रहा है? बोले चक्कर। बोला हमको चक्कर में नहीं पड़ना, ये चक्कर नहीं, चलो। शंकर जी के यहां जाके प्रणाम किया तो उन्हीं का अंश था, कैलाश में गया। बाबा ने कहा आइए, बोला बहुत संकट है। बोला क्या हो गया? बोले चक्कर, चक्कर में नहीं पड़ना। वैकुंठ चले गए तो कितने समर्थ थे ये भी तो देखो, वैकुंठ में जाने का उनमें सामर्थ था, वैकुंठ पहुंच गए। भगवान विष्णु को प्रणाम किया और वहीं कहा आपका चक्कर। बोला इस वक्त ये चक्कर मैं शांत नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? बोले मैं आपको सुनाता हूं, और ये श्लोक सुनाया कि साधु मेरे हृदय, मैं साधु का हृदय, वो मुझे छोड़ के किसी को नहीं जानते, मैं उनको छोड़ के किसी को नहीं जानता। अब मैं इस चक्कर को नहीं रोक सकता, लेकिन आपको एक सलाह दे सकता हूं। क्या? बोले तत्काल जाओ अम्बरीश को जाके प्रार्थना करो, वो कहेगा तब चक्कर शांत होगा। अब देर मत करो, जाओ। और अम्बरीश के पास ही चला गया दुर्वासा, और उसको नमस्कार कर रहा था। दुर्वासा एक साल तक खड़ा था, भोजन नहीं किया था। दुर्वासा ने को जरा संकोच हुआ कि ये तो बड़ा महात्मा है, मैं तो क्षत्रिय का कार्य कर रहा हूं राजा, और ये ब्राह्मण है, ये मेरे को प्रणाम करे ये उचित नहीं है। फिर दुर्वासा, फिर महाराज अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की प्रार्थना की कि आप शांत हो जाओ भगवान के ज्वाला रूप सुदर्शन चक्र। फिर सुदर्शन चक्र शांत हुआ, तब अम्बरीश को महाराज ने कहा, तब दुर्वासा को अम्बरीश महाराज ने कहा, मैं भक्तों की महिमा नहीं जानता था। और यहां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तभी भगवान का, तभी से पहले पे एक लाइन पढ़ रहे ना, इस गलत फहमी के कारण दुर्वासा मुनि ने राजा को मारने का प्रयास किया। तभी भगवान का प्रसिद्ध अस्त्र सुदर्शन चक्र भक्त राजा की रक्षा के लिए घटना स्थल पर प्रकट हुआ। अब सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि पर आक्रमण किया तो वे इस अस्त्र के भय से भागे और स्वर्ग के सारे बड़े बड़े देवताओं की शरण मांगने पहुंचे। उनमें से कोई भी उनकी रक्षा करने में समर्थ न हो सका। अतएव दुर्वासा मुनि ने भगवान विष्णु की क्षमा याचना की, किंतु भगवान विष्णु ने उन्हें परामर्श दिया कि यदि वे रक्षा चाहते हैं तो उनसे नहीं अपितु महाराज अम्बरीश से क्षमा पा सकते हैं। इस संदर्भ में भगवान विष्णु ने ये श्लोक कहा। तो ये सारी कथा, इस श्लोक कब क्यों किस वास्ते कहा वो बता दिया। भगवान परिपूर्ण एवं सभी समस्याओं से मुक्त होने के कारण अपने भक्तों की प्राण पण से रक्षा करते हैं। भगवान परिपूर्ण एवं सभी समस्याओं से मुक्त होने के कारण अपने भक्तों की प्राण पण से रक्षा करते हैं। उनकी एकमात्र चिंता यही रहती है कि अपने चरणों में शरण लेने वालों को वे कैसे ऊपर उठाएं और उनकी रक्षा करें। यही दायित्व तो गुरु को भी है। देखो अब ये श्लोक यहां क्यों आया है उसके तात्पर्य अब लिख रहे हैं। पर हाँ, गुरु कहा यहां, यही दायित्व का मतलब जो भगवान का दायित्व है, वही दायित्व, यही दायित्व गुरु को भी सौंपा जाता है। प्रमाणिक गुरु की चिंता यही होती है कि जिन भक्तों ने उन्हें भगवान का प्रतिनिधि मानकर उनकी शरण ग्रहण की है वे किसी तरह भक्ति में अग्रसर हों। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने उन भक्तों का सदैव ध्यान रहता है जो उनके चरण कमलों की शरण में आकर उनसे संबंधित ज्ञान के अनुशीलन में पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। ओम ज्ञान चिमरान्यस्य ज्ञानाञ्जनशुनकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरु। तो ये श्लोक कह रहा है कि भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं। भगवान का हृदय है, भक्त का हृदय है भगवान, भगवान भक्त का हृदय है। अब ये प्रसंग यहां क्यों आया है, एक ये श्लोक है जो सिद्धांत का श्लोक है। वंदे गुरुम ईश भक्ताम ईशम ईश अवतारकान तत प्रकाशांच तशक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। अब ये 34वां श्लोक है इस अध्याय का। इस श्लोक में ये बताया है 6 रूपों में गुरु की वंदना की गई है। 6 रूपों में कृष्णदास कविराज ने संस्कृत में इस श्लोक, इस पुस्तक के आरंभ में ये श्लोक लिखा है और उसमें वो छह परम सत्य, भगवान जो परम सत्य है वो छह प्रकार से प्रसिद्ध है और यहां गुरु बहुवचन में है। इसका मतलब जो आध्यात्मिक शिक्षा देता है वो गुरु है। और कहां से शिक्षा गुरु देता है? शास्त्र से देता है, उसको प्रमाणिक। तो ये प्रमाणिक गुरु प्रभुपाद जी सब लिखते हैं। ये प्रमाणिक क्यों लिखा है? बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर क्यों लिखा है? प्रमाणिक शास्त्र के आधार पे शिक्षा देता है। ये प्रमाणिक शब्द लिया है शास्त्र से, जो प्रमाणिक शास्त्र के, क्योंकि बहुत से गुरु समाज में हैं जिनका कोई शास्त्र नहीं, शास्त्र है ही नहीं, ऐसे ही गुरु बने हुए। तो प्रमाणिक गुरु वो है जो भगवान की वाणी शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा दी। और दूसरा लिखा है दूसरे भी सहायता करते हैं नए सीखने वाले भक्त को। पहला गुरु वो है जो उसको मंत्र देता है, महामंत्र देता है, उसको दीक्षा गुरु कहते हैं। और दूसरे संत जो उसको शिक्षा देते हैं भक्ति में, कृष्ण भावना में बढ़ने के लिए, उनको शिक्षा गुरु कहा जाता है। अब ये शिक्षा गुरु कौन सा है? असल में ये शिक्षा गुरु है हृदय में बैठा हुआ परमात्मा, सबको अंदर से पहले शिक्षा देता है। ये है, आगे आएगा। अब लिखा है जो दीक्षा गुरु है और शिक्षा गुरु है दोनों समान है, दोनों समान है और दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की, यह शब्द लिखा है, और आइडेंटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण। इसका मतलब दोनों समान कृष्ण के प्रकाश हैं। कृष्ण इन दो रूपों में प्रकाशित हुए हैं। वो उनका व्यवहार भले अलग हो, एक मंत्र देता है एक शिक्षा देता है, लेकिन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की अभिव्यक्ति है। उन दोनों का एक ही काम है कि बद्ध जीव को भगवत धाम ले जाने का मार्ग दिखाएं और सिखाएं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु और सिक्स गोस्वामी इनको गुरु के रूप में स्वीकार किया है। पहले कविराज गोस्वामी कहते हैं ये छह गोस्वामी हमारे शिक्षा गुरु हैं। ये आज एक बात थोड़ी ध्यान से समझ लेना, ये शिक्षा गुरु का स्तर बहुत ऊपर का है। ये छह गोस्वामी हमारे शिक्षा गुरु हैं। इनकी शिक्षा, ये हमारे शिक्षा गुरु कैसे हैं? उनके लिखे हुए पुस्तकों से हम अपनी भक्ति करते हैं। हम जो भक्ति करते हैं वो भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत के माध्यम से करते हैं। तो ये छह तो हमारे शिक्षा गुरु है। और फिर यहां लिखा है नित्यानंद को अपना शिक्षा गुरु मानते हैं। शिक्षा नहीं, असल में नित्यानंद ने तो उनको, वो तो उनका गुरु है ही, इन सबको शिक्षा गुरु मानते हैं। और ईश भक्त का अर्थ है भगवान के शुद्ध भक्त, जैसे श्रीवास। वो भी भगवान से अभिन्न है। ईश अवतार का अर्थ है अद्वैत आचार्य, जो भक्त के रूप में अवतार हुए हैं। और फिर तत्प्रकाशम का अर्थ है, तत्प्रकाशम भगवान का अपना प्रकाश, नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु। तत्शक्ति, तत्शक्ति कौन है? नित्यानंद। एंड इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर द शक्ति एफर्ट. सो नित्यानंद प्रभु का प्रतिनिधि गुरु है. द शक्ति रेफर टू स्पिरिचुअल एनर्जी. शक्ति श्री चेतना महाप्रभु, गदाधर, दामोदर, जगदानंद, ये सब अंतरंग शक्ति है. गदाधर राधा रानी का अंश है और जगदानंद सत्यभामा और दामोदर ललिता. तो ये सब भगवान की अंतरंग शक्ति है. ये छह जो सिद्धांत है ये सभी पूजनीय है. कृष्णदास कविराज अपना प्रणाम कर रहे हैं और हमको सिखा रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु का पूजन कैसे करना चाहिए. अब इस सिद्धांत के बाद लिखा है मैं अपने दीक्षा गुरु को प्रणाम करता हूं. फिर लिखा है मेरा शिक्षा गुरु छह गोस्वामी है. ये कविराज अपनी बात लिख रहे हैं. मेरा है शिक्षा गुरु छह. अच्छा कविराज गोस्वामी का दीक्षा गुरु कौन है? मंत्र गुरु आर्यत शिक्षा गुरु गण तार चरण आगे करिया वंदन. एक गुरु ने मंत्र दिया, बाकी गुरु ने शिक्षा दी. उन सबको मैं प्रणाम करता हूं. और तब लिखते हैं नाम लिखा है छह गोस्वामियों का. और भी भगवान के बहुत से भक्त हैं, उनको मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूं. अद्वैत आचार्य को प्रणाम कर रहा हूं, नित्यानंद राम को प्रणाम. और फिर लिखे हैं ये छह एक में कैसे हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं. अब ये बात लिखिए सुनिए. यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य दास, इसका अर्थ क्या है? मैं ये जानता हूं कि मेरा गुरु चैतन्य महाप्रभु का सेवक है. तथापि जानिया हमी तहार प्रकाश, फिर भी मैं जानता हूं ये उनका प्रकाश है. उनका सेवक है फिर भी उनका प्रकाश है का मतलब, प्रकाश का क्या मतलब है? भगवान का विस्तार. प्रकाश का मतलब है भगवान का विस्तार है. है भगवान का सेवक लेकिन भगवान का विस्तार है. अब वो आगे इस बात को समझाएंगे. तब भागवत का श्लोक लिखा है, भगवान ने अपने मुख से कहा है आचार्य को मेरा स्वरूप मानो. ये श्लोक भी पढ़ लेते हैं. आचार्य माम विजानेयाम, आचार्य को मेरे समान समझो, कभी भी उसका अपमान मत करो, उसको सामान्य मत समझो. ये आचार्य के लिखा है. अब आ रहा है दूसरा, जिसका प्राय महत्व या तो हमने बहुत कम कर दिया है या बहुत ज्यादा कर दिया है लेकिन प्रॉपर नहीं. अब जो श्लोक आ रहा है शिक्षा गुरु त जानी कृष्णेर स्वरूप. शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप जानो. अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप. अब यहां श्लोक लिखा है शिक्षा गुरु भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है. भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में और एक महान भक्त के रूप में विस्तृत होते हैं. अब ये बात शिक्षा गुरु भी कही जा रही है, इसलिए कहा है कि भगवान का हृदय परमात्मा भी हृदय में है और भक्त के हृदय में भी परमात्मा है. इसलिए शिक्षा गुरु की महिमा के लिए आज का श्लोक हमने पढ़ा है. ये शिक्षा गुरु का प्रमाण दे रहे हैं. तो कहते क्या है, जो शिक्षा गुरु है वो श्री कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि है. भगवान श्री कृष्ण स्वयं गुरु को हृदय से प्रेरणा देते हैं और हमको अंदर से भी और बाहर से, अंदर से परमात्मा बाहर से गुरु के रूप में. तो ये दो भगवान के रूप है, शिक्षा गुरु और परमात्मा. मंत्र गुरु अलग हो गया, अब दो और हैं, इसकी बात हो रही है। बहुत लंबा इसका तात्पर्य आपने पढ़ा होगा, बहुत लंबा तात्पर्य इसका और अच्छा है। और यहां यह लिखा है, यह भी आप याद कर लो, दोबारा पहले पढ़ा भी हो, दीक्षा गुरु मंत्र देने वाला मदन मोहन का स्वरूप है। मदन मोहन जो संबंध के आचार्य है, वो संबंध के विग्रह है, जो हमारा भगवान से संबंध कराता है। कैसे कराता है? हमारे नाम के पीछे दास लगाता है और हमारा भगवान से संबंध कराता है। और फिर लिखा है दीक्षा गुरु गोविंद देव का प्रतिनिधि है, जो क्या करते हैं, अभिधेय के विग्रह है, जो हमको भक्ति सिखाते हैं। ये बात, ये दोनों जो विग्रह हैं गौड़ीय वैष्णव के, प्राण है मदन मोहन, दीक्षा गुरु, दीक्षा देने वाला गुरु मदन मोहन का प्रतिनिधि है, और शिक्षा देने वाला गुरु गोविंद देव का प्रतिनिधि है। और हमारा अभिधेय का आचार्य कौन है? रूप गोस्वामी। और संबंध के आचार्य कौन है मदन मोहन को प्रकट करने वाले? सनातन गोस्वामी। तो इसलिए प्रभुपाद ने लिखा है कि हम रूप गोस्वामी के अधीन है, क्योंकि हमको करनी भक्ति है। ये जो लिखा है, इससे ऐसे लगता है कि शिक्षा गुरु का महत्व ज्यादा है भक्त के जीवन में। अब आगे एक उदाहरण देंगे कवि इसका, बिलो मंगल ठाकुर का। वो कहता है, वो नाम लेगा कि मेरा दीक्षा गुरु ये है, पद प्रतिष्ठित गुरु ये है, और मेरा अपना गुरु कृष्ण है। तीन गुरु का वर्णन करेंगे। श्लोक आपने पढ़ा है, आपको सब नहीं होंगे, हो सकता है याद नहीं है, यहां आया तो बताऊं। और इन दोनों का वृंदावन में पूजन होता है। गोपीनेथ, गोपीनाथ जो है वो तो हमारी परम सिद्धि को प्राप्त करके कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का विग्रह है, वो प्रयोजन का विग्रह है। तो अब ये तीन तो याद कर लीजिए आज। क्या तीन याद करेंगे? दीक्षा गुरु किसका प्रतिनिधि है? मदन मोहन का। और शिक्षा गुरु, और भगवान का प्रेम प्रकट हो उसका, वो ठाकुर कौन से हैं? राधा गोपीनाथ। अब कर्णपुर की बात लिखते हैं, इसी के बाद है वो, क्या लिख रहे हैं वो सुनिए। इसके बाद तो बहुत बड़ा भारी, यहाँ चतुर्श्लोकी भागवत के चार श्लोक लिखे हुए। इसके बाद आप तो यहाँ पढ़े होंगे चतुर्श्लोकी भागवत के चार श्लोक लिखे हैं। वो क्यों लिखे हैं? वो ब्रह्मा जी ने भगवान को हृदय में ज्ञान दिया है, हृदय में ज्ञान दिया है। तो शिक्षा दी है, और ये शिक्षा का सार है, और जो ये सार देता है वो गुरु है। ये चार ब्रह्मा जी के श्लोक कह के अब ये श्लोक बिनो मंगल ठाकुर का है। चिंतामणि जयति सोमगिरी गुरुर में शिक्षा गुरुश्च भगवान सिखी पुछम मौली यत पाद कल्पत्रुपल पल वसे खरेशु लीला स्वयं वर रसम लभेत जय श्री। अब लिख रहे हैं कौन? बिलो मंगल ठाकुर, ये 10वीं 12वीं शताब्दी के हैं। इसका पूरा चरित्र दिखाया प्रभुपाद ने। पहले कहते चिंतामणि जो वैश्या थी, जिसने मुझे भगवान का रास्ता दिखाया, वो मेरा गुरु है। उसने कम से कम मुझे भौतिक भोग से बचाया। और फिर कहते हैं चिंतामणि, और फिर मेरा दीक्षा गुरु मंत्र गुरु सोमगिरी, उसने मुझे मंत्र दिया। और फिर कहते हैं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, मैं, और फिर मैं शिक्षा गुरु कौन है, कहते भगवान स्वयं है। कौन? श्री कृष्ण, मोर मुकुटधारी मेरे शिक्षा गुरु है। और उनके चरण कमल कल्प वृक्ष है, और जय श्री राधिका उनकी प्रियसी है, वो मेरे। तो प्रभुपाद जी ने यहां लिखा है, ये कृष्ण करणामृत का श्लोक है, बिलो मंगल ठाकुर के लिए लिखा है। एक खास बात लिखी है कि बिलो मंगल ठाकुर ने द्वारका के मंदिर का निर्माण कराया, या द्वारका का मंदिर ये 8वीं शताब्दी का, यहां शाकेरा का है और विष्णु स्वामी संप्रदाय का है। द्वारकाधीश मंदिर इन्होंने बनाया था, बिलो मंगल ठाकुर ने। बाद में इसकी पूजा वल्लभाचार्य की संप्रदाय को दी। ये बिलो मंगल ठाकुर, ये किसी को मालूम नहीं है। तो यहां वो तीन गुरुओं की बात कही है, उसको यहां लेके लिखा है, पद प्रतिष्ठित गुरु, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। और यहां शिक्षा गुरु भगवान को सीधा कहा है, क्योंकि भगवान रोज उनको दूध का पान, दूध का बर्तन ला के देते थे, उंगली से पकड़ के ले जाते थे, तो उनको अपना गुरु बताया है। और फिर लिखा है, क्योंकि परमात्मा को सब नहीं देख सकते हैं, इसलिए जीव का मुक्त, जीव को मुक्त करने के लिए भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं। अब ये श्लोक है, जीव साक्षात नहीं ताते गुरु चैतन्य चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु है कृष्ण महांत स्वरूपे। क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं, उसको जीव देख नहीं सकता, इसलिए वो भक्तों के उद्धार के लिए गुरु के रूप में श्री कृष्ण ही प्रकट होते हैं। अब ये बात कह के फिर ये श्लोक आया है, क्या करेगा गुरु आके, सतांग प्रसंगाम मम वीर्य। ये श्लोक इसके बाद है भागवत का, कि मेरे शुद्ध भक्तों के मुख से मेरा कीर्तन कथा जो सुनने को मिलता है, वो कान के लिए अमृत है, और वो मुक्ति का दरवाजा खोल देता है, और उससे हमारी श्रद्धा भक्ति और प्रेम जागृत होता है। ये श्लोक दिया है, और इसके बाद दिया है, शुद्ध भक्त भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा होता है, इसलिए वो भगवान के समान है। और फिर ये बात कही है, अब हमारे श्लोक आने से पहले, ईश्वर स्वरूप भक्त तहारा अधिष्ठान, भक्तेरा हृदय कृष्ण रत विश्राम। ये श्लोक जो आज हमने पढ़ा है, ये क्यों आया यहां, ये श्लोक उससे पहले है। ईश्वर स्वरूप भक्त तहार अधिष्ठान, इसका मतलब ईश्वर के, अब जो इसको समान का अर्थ ये नहीं लिखा है कि भगवान बन गया गुरु, ईश्वर स्वरूप भक्त तहार अधिष्ठान, इसका मतलब निरंतर भक्त भगवान का चिंतन करता है, और भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम, भगवान श्री कृष्ण भक्त के हृदय में सदा रहते हैं। अब इस श्लोक, ये चेतना चरितामृत का श्लोक है, इस श्लोक का प्रमाण देने के लिए आज का श्लोक है जो हमने पढ़ा, कि साधु में हृदय मां। अब इस श्लोक का प्रमाण दिया है, किस श्लोक का प्रमाण दिया है, कि भक्त सदा ही भगवान का चिंतन इतना गंभीर और गहन करते हैं के भक्त के हृदय में भगवान नित्य निवास करते हैं। और इसको नरोत्तम दास ठाकुर ने कैसे गाया है, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पां आमी तो कंगा दाए तब पांच पांच, कृष्ण से तुम्हार। और प्रभुपाद जी एक दिन बैठे थे, छोटा कृष्ण का विग्रह हाथ में था और सरस्वती छोटी बच्ची सामने खड़ी थी, उसको कहा ये लो, वो लेने आई तो छुपा दिया। फिर बोला कृष्ण कहाँ है बताओ, सरस्वती कृष्ण कहाँ है बताओ, तो बुझा के तैयारी आपके पास है। और तब जो खड़े थे भक्त उन्होंने कहा यही सिद्धांत है, कृष्ण गुरु के पास है, गुरु जिसको चाहे उसको दे सकता है। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार, आप ही दे सकते हो कृष्ण को। और लेकिन ये लिखा यहां प्रसंग जो चल रहा है वो लिखा है, अब इसके बाद ये साधु हृदय की बात है, और इसके बाद जिसके हृदय में साधु के भगवान होता है उसके लिए कल भी भागवत का ही श्लोक है। इसलिए भागवत को भी गहरा समझने के लिए चैतन्य चरितामृत के श्लोक बहुत विस्तार से भागवत को समझाते हैं, इसलिए भागवत से भी ऊपर स्थान चैतन्य चरितामृत को दिया गया है। भागवत से भी ऊपर चैतन्य चरितामृत को स्थान दिया गया है। क्यों? भगवत गीता भगवान क्या कहते हैं आप सुन सकते हैं, कहीं भी चलते फिरते सुन सकते हैं। भागवत भगवान क्या करते हैं ये तो जब भगवान के बिल्कुल घर में जाओगे तब पता लगेगा क्या करते हैं, नहीं तो क्या करते हैं देख नहीं सकते। लेकिन भगवान क्या सोचते हैं ये तो भगवान के घर में जाने से भी पता नहीं लगेगा। तो भगवत गीता है भगवान क्या कहते हैं, भागवत है भगवान क्या करते हैं, और चेतना चरितमृत है भगवान क्या सोचते हैं। तो भगवान के हृदय की बातें हैं इसमें, और भगवान किसके हृदय में है ये यहां बताया गया है कि भगवान किसके हृदय में है। सबके हृदय में परमात्मा के रूप में, लेकिन किसने उसको साक्षात किया है, जिसने साक्षात किया है। वैसे गुरु कैसे भगवान देगा ये बहुत बड़ा एक प्रसंग है, गुरु भगवान कैसे देगा। हमें चाहिए क्या असल में, हमारे हमारा दीक्षा लेना हमारा भक्ति करना उसका उद्देश्य क्या है। आप सब भक्त हैं, दीक्षा लिया है या लेने वाले हैं या ले लिया है, उद्देश्य क्या है आपका। कृष्ण कृष्ण प्रेम को, मैं इसको सरल भाषा में बोलूं, प्रभुपाद जी से एक बार उनके एक शिष्य ने प्रार्थना करके पूछा कि गुरुदेव मैं क्या करूं आप प्रसन्न हो जाएं, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं। प्रभुपाद थोड़ी देर शांत रहे फिर कहा जब तुम कृष्ण से प्रेम करना सीख जाओगे तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इसका अर्थ है कि हम सब भक्ति में आए हैं काय के लिए, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए। अब ये कृष्ण प्रेम पहले से हमारे हृदय में भगवान ने भर के भेजा, किसी का हृदय प्रेम से खाली नहीं। उस प्रेम को जगाने के लिए गुरु के हृदय से कुछ चीजें कही गई हैं यहां, जो छह सिद्धांत है। कौन से छह सिद्धांत हैं जो गुरु के विषय में लिखा है, वंदे गुरुम ईशम ईश अवतारम ईश भक्ताम ईश शक्ति, ये जो पढ़ा था ना इसमें जो ईश शक्ति है वो गुरु के हृदय से जब स्निग्ध शिष्य, स्निग्ध किसको बोलते हैं, स्निग्ध वैसे संस्कृत में घी को बोलते हैं, तेल को, घी को स्निग्ध कहते हैं। इसका मतलब जैसे बिठाओ वैसे, अब जिस बर्तन में डालोगे घी वैसे ही घी वैसा ही रूप ले लेगा ना। इसका मतलब जो आज्ञाकारी है, जैसे कहो वैसे करने को तैयार है, उसको स्निग्ध शिष्य कहते हैं। और ये स्निग्ध शिष्य भागवत के पहले अध्याय में ही है कि आप स्निग्ध शिष्य थे इसलिए गुरुओं ने अपने हृदय की बात आपको बता दी। आपने ये लाइन सुनी है, ये सूत गोस्वामी को कहते हैं स्निग्ध शिष्यस्य गुरु, वहां भी बहुवचन में गुरु है कि गुरु अपने हृदय का सारा राज उसको बता देते हैं जो ऐसा आज्ञाकारी शिष्य होता है। तो वो क्या देते हैं गुरु, वो शक्ति कौन सी देते हैं जिस शक्ति से हमारे जीवन का लक्ष्य प्रेम प्रकट हो, जागृत हो जाता है। ये चीज मांगनी चाहिए, प्रार्थना करके मांगनी चाहिए, कृपा कीजिए गुरुदेव, कृपा श्रद्धा बिंदु दिया गुरुदेव। वो क्या चीज है, वो ईश शक्ति, वो है ईश शक्ति। तो भगवान की शक्ति कौन सी है, राधा रानी। और उसका स्वरूप कल हमने सुना कौन सा है, अलादीनी शक्ति। और इसी से पहले कितनी शक्तियां भगवान की, एक ही शक्ति अंतरंग के तीन रूप है, कौन से, अलादीनी और संबित और सैंदनी। संबित क्या काम करती है, कृष्ण का पहचान कराती है, और हलादिनी क्या करती है, आनंद का अनुभूति कराती है। ये दो शक्तियां संवित और हलादिनी, ये गुरु के हृदय से शिष्य के हृदय में कृपा करके आएंगी, तब भाव भक्ति हमारी जाग जाएगी और हमारे जीवन का लक्ष्य प्रेम भक्ति प्रकट होना शुरू हो जाएगा। ये कौन देता है, असल में ये बात उसकी चल रही है, बहुत गंभीर बात है, गहरी बात है। ये कौन दे सकता है, कैसे देख सकता है, वो हृदय में भगवान बैठा हुआ है, जब प्रेरणा देगा तब वो देगा परमात्मा, लेकिन सेवा करेंगे तब देगा। ये असल में गुरु क्या देता है, यही देता है कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाए। अब ये मांगना चाहिए जाके, कृपा कीजिए हमारे ऊपर ये आशीर्वाद, ये भगवान प्रेम हमारा जागृत हो जाए, ये कृपा कीजिए। बाकी सब साधन करना, जमीन को ठीक करना है, बीज डालना, बीज तो पहले पड़ा है लेकिन उसको पानी चाहिए और रोशनी चाहिए। बीज तो वहां है प्रेम का, लेकिन उसके लिए पानी और रोशनी चाहिए, उसको अंकुरित होने के लिए। ये है दो शक्तियां जो गुरु के हृदय से आती, और ये गुरु बहुवचन में है, तो दूसरों का आदर देना। इसलिए इस कांड में जो ये एक दीक्षा से पहले जो डिसाइपल कोर्स कराते हैं उसमें मुख्य बात ये सिखाते हैं कि प्रभुपाद जी हम सबके शिक्षा गुरु, जैसे कविराज गोस्वामी के शिक्षा गुरु छे गोस्वामी, और हम सबके शिक्षा गुरु प्रभुपाद, क्योंकि उनके शास्त्रों से हमारी भक्ति का आधार तो वो है, तो वो हमारे शिक्षा गुरु नित्य सदा और आने वाली 10,000 साल तक सब पीढ़ियों के रहेंगे। ये बात इसका सिद्धांत पहला। फिर ये सिखाते हैं दूसरे गुरुवर जो भी शिक्षा दे रहे हैं उन सब का आदर करना चाहिए, उन सब के प्रति आदर भाव रखना चाहिए, हमारी भक्ति के प्रगति के लिए। आदर भाव रखने से हम अपराध करने से बच जाएंगे। जैसे एक सामान्य से मैं आपको उदाहरण दूं, ऐसे शास्त्र का नियम है कि भगवान के विग्रह सारे ही समान है। अब कोई कहे कि हमारे मंदिर का विग्रह तुम्हारे मंदिर के विग्रह से अच्छा है तो ये अपराध है। भाई राधा कृष्ण आपके मंदिर में भी है, दूसरे मंदिर में भी हमारे हैं, भाई इस्कान के 100 मंदिरों में राधा कृष्ण है, कोई कहे नहीं हमारा राधा कृष्ण तुम्हारे से अच्छा है, तो ये अपराध है। अब गुरु भी तो भगवान का प्रतिनिधि है, ये कहें कि मेरा गुरु तेरे से अच्छा है, ये भी अपराध है। ये सावधानी करने के लिए ही लिखा है। तो सभी गुरु को प्रणाम है, मेरा गुरु मेरे लिए अच्छा है, तेरा गुरु तेरे लिए अच्छा है, सभी गुरु अच्छे हैं, हाथ जोड़ लो। ये सावधान करने के लिए, अपराध से बचाने के लिए कहा है, क्योंकि अपराध हमारी भक्ति में बड़े से बड़ी रुकावट है, और उसमें भी वैष्णव अपराध। तो ये शिक्षा असल में हमारी भक्ति को आगे बढ़ने के लिए, अपराध से बचने के लिए दी गई। तो सबके प्रति आदर भाव होना चाहिए, और सभी एक प्रभुपाद के प्रति, जैसे प्रभुपाद के प्रतिनिधि है, सारे ही प्रभुपाद की संस्था को ही तो विश्व में प्रचार कर रहे हैं, हर एक अपने जो उसमें जो भगवान ने उसको शक्ति दी है उससे कर रहे हैं, तो सबके लिए आदर भाव होना चाहिए। ये इस सारे अध्याय का मुख्य सार ये। तो किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ, एक दो हाथ ऊपर है, बोलिए। हाँ जी,
हरे कृष्ण। उनके लिए प्रश्न आया था कि हम जितने भी जो भक्ति कर रहे हैं वो केवल कृष्ण प्रेम पाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम तो मधुमंगल भी करता था, कृष्ण प्रेम मधुमंगल भी करता था, कृष्ण प्रेम माँ यशोदा भी करती थी, और कृष्ण प्रेम गोपिया भी करती थी, तो हमें कौन सा प्रेम चाहिए?
ये तो आपको बनाना चाहिए,
ये तो गुरु ने ही बताया।
ये भी आप यही तो मतलब, यही तो चार प्रकार का दास्य, सखा, वात्सल्य और माधुर्य, ये चार प्रेम चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किए हैं। हमारे अंदर एक संबंध पहले से पड़ा है, उसको जागृत करेंगे, पता लग जाएगा कि हम मधु मंगल के पीछे चलेंगे या यशोदा के पीछे चलेंगे या विशाखा के पीछे चलेंगे। गुरु बताएगा जब हम उसके लायक बनेंगे, तो जब हम उसके लायक होंगे तब बनाएगा। और एक बात यह है कि ये सारे के सारे एक काम करते हैं, सेवा, चाहे मधुमंगल हो, चाहे यशोदा हो या राधा, सेवा हमारा स्वरूप है, और गुरु हमारे को दास का नाम देकर सेवा में लगाते हैं। फिर हमारी सेवा अपने आप कौन से रूप में प्रकट होती है वो टाइम से पता लगेगा, लेकिन सेवा में लगाते हैं। पांचों रसों में सेवा है। हाँ, शांत को ज्यादा महत्व नहीं दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, चार को ही स्वीकार किया
है। बाकी
हाँ, शांत है, शांत में चार कुमार हैं, शांत रस के उदाहरण। कोई शांत रस सामान्य रस नहीं, वो बहुत बड़ा रस है, लेकिन फिर भी उसमें ममत्व नहीं है, मेरा है भगवान ऐसा नहीं है, इसलिए महाप्रभु ने चार रसों को मुख्य रूप से स्वीकार किया। बताते हैं गुरु जो उस स्तर पे आए, जो रहा है सिखा, उसको सिखाते हैं, सिखाते नहीं, नहीं सिखाते, सेवा करना सिखाते हैं, फिर अपना स्वरूप अपने आप समय आने के ऊपर विकसित हो जाता है। देखो, बीज डाल दिया, पानी देना शुरू कर दिया, अब जैसा अंदर बीज डाला वैसा ही पौधा निकलेगा, आम का डाला तो आम का निकलेगा और खजूर का डाला का तो खजूर का निकलेगा। सब गोपी भाव नहीं है, सखा भाव के भी बहुत सारे हैं, गोरिया स्वभाव में सखी भाव, सखा भाव के बहुत सारे हैं। अरे भगवान महाप्रभु के साथ आए थे गोरीदास पंडित, ये सखा थे, तो गोपियां भी है, सखा भी है, मंजरियां भी है, सेवक भी है, रक्तक है, पत्रक है, ये सब सेवक है, ये सारे भाव हैं भाई। और यहाँ तक भी गोरिया वैष्णव में राम भगत हनुमान भी आए हैं।
और एक प्रश्न ये था, अगर हमने प्रश्न करा है तो भक्तों को इस पे जो है ना विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सोचने की उस व्यक्ति ने उत्साह करके हाथ बढ़ाकर अपना प्रश्न रखा है, तो उसका क्या करना चाहिए, इस तरह से वो नहीं करना चाहिए कि आशा है नहीं, वो आगे जाते हुए तीसरा व्यक्ति इस तरह से भी कोई प्रश्न नहीं कर सकता। हरे कृष्ण।
क्या मतलब
विरोध नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने अपना अगर मैंने अपना प्रश्न रखा है तो जो है आगे जाकर कुछ वैष्णव भक्त है वो जो है हंस रहे हैं, तो मैं
हंसने दो।
हाँ जी, तो तीसरा जो व्यक्ति होगा वो भी कर जाएगा, कहीं मैं करता तो मेरे कारण ना हंस दिए।
हंसना अच्छा है।
हरे कृष्ण।
हरे हंसना बड़ा काम का है। हास्य एक रस है भाई, वो रस की पुष्टि करता है। हाँ जी, आपका क्या प्रश्न है पूछ लीजिए।
हरे कृष्ण,
दीक्षा गुरु से ऊंचा होता है ऐसे मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा, जो मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं कहना चाह रहा था, आजकल जो भक्ति वृक्ष चलाते हैं वो अपने आप को शिक्षा गुरु करके पूजाने की मूर्खता करते हैं। मैं उनके लिए कह रहा था कि वो शिक्षा गुरु का स्तर नहीं है। शिक्षा गुरु का स्तर ऐसा है कि आप परम पूज्य लोकनाथ गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं, महाराज जी यहाँ नहीं है, आपको कोई बात किसी के आप दूसरे महाराज के, जब मैं उदाहरण दूं कि आप परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के सानिध्य में पुस्तक वितरण की सेवा कर रहे हैं, वो आपको सेवा में लगा रहे हैं, तो वो आपके शिक्षा गुरु हुए। दोनों हैं गुरु अपनी जगह पे, एक शिक्षा गुरु का काम कर रहा है, एक दीक्षा का कर रहा है। ऐसा मेरा कहने का भाव ये था कि आजकल बहुत बड़ा आतंक चल रहा है, वो जो भक्ति वृक्ष का लीडर है वो कहता है तुम बाजार में कहीं जाओगे मुझसे पूछ के जाओ, खाओगे तो मुझसे पूछ के खाओ। ये जो आतंक चल रहा है ये शिक्षा गुरु के नाम में, ये गलत है। अब शिक्षा गुरु इतना नीचे का स्तर नहीं, शिक्षा गुरु वो है जो आपकी भक्ति को आगे बढ़ाए, ये समस्या है। भाई हमारे, मैंने कहा प्रभुपाद हमारे शिक्षा गुरु, अब बताओ इसकी तुलना में किसको शिक्षा गुरु करोगे। बिल्कुल शिक्षा गुरु हमारे प्रभुपाद अनंत रहेंगे हमेशा।
कई संस्थाओं में वो शिक्षा गुरु को सर्वश्रेष्ठ मान करके उन्हें शिक्षा देते हैं,
उन्हें दीक्षा नहीं ले, दीक्षा उनसे नहीं होती, इसलिए दो लिखा है कि मंत्र गुरु, मंत्र गुरु शिक्षा गुरु अलग लिखा है।
वो ऐसा है ना, जैसे कुछ संस्था ऐसी है जहाँ शिक्षा गुरु प्रभुपाद को फाइनल माना जाता है।
अब उसमें हमारा सिर्फ एक प्रश्न है, गुरु का अधिकार है शिष्य को स्वीकार करना, गुरु को अधिकार है शिष्य को स्वीकार करे कि न करे, ये दोनों का। तो उसमें क्या है कि क्या प्रभुपाद ने आपको स्वीकार किया, ये कैसे बताओगे। जीवित गुरु तो हमको कहेगा नहीं चाहिए तुम जाओ, अभी तैयार होके फिर आओ, उसमें ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए उसमें एक त्रुटि ये है कि शिक्षा गुरु जिसको हम मान रहे हैं जो चला गया, उनके शास्त्र को हम मानते हैं मान, परंतु उसको अगर शिक्षा दीक्षा गुरु मान लिया मंत्र वाला, तो उसने स्वीकार किया नहीं किया इसका प्रमाण कहाँ है।
गुरु ग्रंथ साहिब भी है, गुरु ग्रंथ साहिब
वो चल रहा है ना, वो वही रास्ता है गुरु का। तो उसको कहते हैं शब्द गुरु, वो शब्द गुरु है, शिक्षा गुरु है असल में, वो दीक्षा गुरु नहीं है। और दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु हमारी परंपरा में भक्ति विनोद, गौर किशोर दास महाराज का भक्ति विनोद कोई शिक्षा दीक्षा गुरु नहीं, दीक्षा गुरु नहीं, शिक्षा गुरु है भक्ति विनोद ठाकुर का। गौर किशोर दास का भक्ति विनोद शिक्षा गुरु है, दीक्षा नहीं। बलदेव विद्या भूषण का चक्रवर्ती पाद दीक्षा गुरु नहीं है, शिक्षा गुरु है। हमारे पास शिक्षा प्रणाली चलती है, लेकिन मंत्र गुरु का अपना आदर अपनी जगह पे रहता है। उसके बगैर से आप ये एक सीधा सिद्धांत समझ लिए, मंत्र गुरु की दिए हुए मंत्र की शिक्षा गुरु आगे शिक्षा दे के आगे बढ़ाएगा। पहले अगर मंत्र ही नहीं होगा, नींव ही नहीं डाली होगी, तो शिक्षा गुरु क्या करेगा? शिक्षा गुरु का मतलब है दीक्षा गुरु के दिए हुए शिक्षा को आगे बढ़ाने में सहायता करे। तो पहले शिक्षा गुरु होना चाहिए, तब दीक्षा गुरु की जरूरत पड़ती है। ये इसका सिद्धांत है, पहले होनी चाहिए। एडमिशन तो होना चाहिए, तब कोई पढ़ाएगा टीचर आके। आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं है, एनरोलमेंट नहीं है, तो प्रोफेसर पढ़ाएगा कहां से? तो शिक्षा गुरु है प्रोफेसर, लेकिन एनरोलमेंट करने वाला दीक्षा गुरु है। और बिना एनरोलमेंट के, बिना एडमिशन के आपको पढ़ाएगा कैसे कोई? तो मंत्र गुरु हमारी एंट्री है और शिक्षा गुरु उसको आगे पढ़ा सिखा सकता है। और दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं जाएंगे। अगर एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं तो दोनों काम के नहीं, एक दूसरे के सहायता है, सहायक है। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।
तो मैं तुम्हें सरल सा प्रश्न है, प्रश्न ये है कि हम जब भगवान के माधुर्य और रस से आस्वादन करना चाहेंगे तो हमारे गोपी भाव होना जरूरी है। तो हम जब गोपी भाव में भगवान को प्रियतम के रूप में चिंतन करना चाहते हैं तो हमारे मन में जो हम जो एक स्त्री के लिए तो आसान हो सकता है गोपी भाव अंदर में बना, लेकिन एक पुरुष के लिए जैसे ये बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि गोपी भाव आने में पुरुष अभिमान रह जाता है। तो हम पुरुष अभिमान से एक्चुअली तो ऋषि भगवान ऋषि पुरुष है, हम सब प्रकृति है, लेकिन फिर भी हमारे इतना जानने के बाद भी हमारे मन में पुरुष भाव आ जाता है, तो इसे कैसे हम इस अभिमान से?
शिलारूप गोस्वामी ने लिखा है माधुर्य रस पुरुष स्त्री दोनों कर सकते हैं, कोई जरूरी शरीर उसके लिए बाधक नहीं। जो भी भाव में गोपी भाव से सेवा करना चाहता है वो पुरुष भी कर सकता है, लेकिन वो ध्यान में करेगा, ध्यान में बैठ के करेगा, कपड़े गोपी के पहन के नहीं करेगा। इसका मतलब कोई माताजी सखा बनना चाहती है तो धोती पहन के चोटी रख के नहीं आएगी, वो जैसे है वैसे रह के सखा भाव में, वो अंदर की मेडिटेशन है, बाहर की नहीं। दोनों कर सकते हैं गोपी भाव, ऐसा कोई दोनों कर, ये सारे हमारे आचार्य गोपी भाव में थे, ये सारे पुरुष थे, स्त्री कौन सी थी इसमें से? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से सारे पुरुष ही थे, तो ये सारे तो मंजरी भाव में है, गोपी भाव में है, कोई देह का फर्क नहीं है। हरे कृष्ण।
पता नहीं कैसे कैसे पूछते हैं, पता नहीं कैसे पूछते हैं।